इशिका और अभिमन्यु साथ में गाड़ी में थे। इशिका के कहने पर अभिमन्यु उसे बाहर लेकर आया था। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी इशिका और अभिमन्यु को साथ में टाइम नहीं बिता रहे थे। ऊपर से इशिका की कंपनी भी जल्द ही पब्लिक होने वाली थी। ऐसे में इशिका ने अभिमन्यु को वादा किया कि अगला एक हफ्ता वो उसके साथ रहेगी। अभिमन्यु इशिका के इस प्रॉमिस से काफ़ी खुश हो गया था। दोनों साथ में इशिका के फेवरेट रेस्टोरेंट में पहुंचे। ये वही जगह थी जहां अभिमन्यु मीटिंग के लिए आया था, तो इशिका शेफ़ के तौर पर ज़बरदस्ती अंदर आ गई थी। वापस वहीं आते ही उस दिन की यादें अभिमन्यु के दिमाग में ताज़ा हो गईं। वहीं इशिका भी याद करके हंसने लगी। इशिका ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, याद है अभिमन्यु, सबके सामने मेरी तारीफ करने के बजाय तुमने मुझे अपने गार्ड से बाहर भिकवा दिया था। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ, हर जगह मुझे स्टॉक करते हुए पहुँच जाती थी तुम। तुम भी कुछ कम नहीं थी, मुझसे मेरी ही बुराइयाँ कर रही थी। वैसे मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी अच्छा कुक करती हो। उस दिन अगर तुमसे इरिटेट नहीं होता या तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं तुम्हारी कुकिंग की तारीफ ज़रूर करता, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। चलो मिस्टर राजवंश, आज तुम्हें एक और मौका दिया जाए। अब तो मैं खुद की तारीफ करवाने का मौका छोड़ने वाली नहीं हूँ, इशिका ने उसे छेड़ते हुए कहा और अपने कदम किचन एरिया की तरफ बढ़ाने लगी। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि ऐसी हालत में इशिका का कोई भी काम करे। वो जल्दी से उसके पीछे गया और बोला, इसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम मैं तुमसे थोड़ा चिढ़ता था, लेकिन मन ही मन तुम्हारी तारीफ ज़रूर करता था। तुम हर काम में परफेक्ट हो। कोई बात नहीं, मुझे कुकिंग करके अच्छा लगता है, इशिका ने जवाब दिया। इशिका एक वक्त में वहाँ के सबसे बड़े और फेमस शेफ़ की इंटर्नशिप में काम कर चुकी थी। सब उसकी काफ़ी इज्जत भी करते थे। वो एक फेमस प्राइवेट रेस्टोरेंट था, इस वजह से किचन को पूरी तरह खाली नहीं किया जा सकता था। लेकिन किचन एरिया काफ़ी बड़ा होने की वजह से इशिका ने एक एरिया पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। अभिमन्यु उसके साथ पास में खड़ा था। क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगी, इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा। उसका इशारा सब्जियां काटने की तरफ था। सॉरी टू से, लेकिन अगर मैं किसी काम में सबसे बुरा हूँ तो वो कुकिंग है। कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला, अभिमन्यु ने जवाब दिया। ठीक है, यही सही, भूल गई थी कि मेरे सामने राजवंश फैमिली का प्रिंस खड़ा है जो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ था। तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, ये तो मुझे उस टाइम ही समझ जाना चाहिए था जब हम किडनैपर्स के साथ रहते थे। तुम्हारे हिस्से का काम भी मुझे करना पड़ता था, इशिका ने अभिमन्यु को तंग करते हुए कहा। वो साथ में कुकिंग भी कर रही थी। इशिका से बात करते हुए अभिमन्यु ने महसूस किया कि भले ही आज तक उन्होंने एक दूसरे के साथ में कुछ खास टाइम ना बिताया हो, लेकिन बचपन से आज तक उनकी जितनी भी यादें थीं वो खास थीं। उनका रिश्ता हमेशा से स्पेशल था। सोचते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर वही ना दिखने वाली स्माइल आ गई थी। उसने इशिका की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी लाइफ नॉर्मल नहीं रही, पर अगर वो नॉर्मल होती तो शायद हम दोनों की शादी कभी नहीं हो पाती और ना ही मैं तुमसे मिल पाता। हाँ, अगर सबको पहले से ही पता होता कि मैं राधिका सिंघानिया की बेटी हूँ तो मेरी शादी नक्श से होती, इशिका ने आई विंग करके कहा। हालांकि इशिका ने सब कुछ काफ़ी हल्के तरीके से कहा था, पर अभिमन्यु को उसका ये मजाक पसंद नहीं आया। उसने मुंह बनाते हुए इंटेंस वॉइस में कहा, बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा मेरी ही होती। दादी कहती है जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, तो हम दोनों की जोड़ी पहले से फिक्स थी। हाँ, फिर हम अलग तरीके से मिलते। तुम काफ़ी पजेसिव हो, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। ऐसे ही बातें करते हुए इशिका ने अभिमन्यु के लिए उसकी पसंद के हिसाब से खाना तैयार कर दिया था, जो हेल्दी भी था और टेस्टी भी था। अगले कुछ ही मिनट में अभिमन्यु और इशिका बाहर डाइनिंग एरिया में थे, जहां उनका खाना सर्व हो चुका था। अभिमन्यु ने टेस्ट किया और फिर इशिका की तरफ देखकर कहा, तुम चाहो तो खुद का रेस्टोरेंट खोल सकती हो, पर ऑलरेडी तुम इतने काम करती हो कि मुझे नहीं लगता कि एक और काम तुमसे करवाना सही होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, पर वीक में एक दिन तो तुम मेरे लिए कुक कर ही सकती हो। हाँ, अच्छा आइडिया है, पर बदले में तुम्हें भी थोड़ा बहुत कुछ सीखना होगा, बोलो मंजूर है, इशिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जिस पर अभिमन्यु ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। अभिमन्यु इशिका को जिस मकसद से बाहर लेकर आया था वो पूरा हो गया था। इशिका का ध्यान भटक गया था और वो इतनी स्ट्रेस भी नहीं ले रही थी। ऊपर से वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। उन्हें कोई दूर से देख रहा था, वो कोई और नहीं आयशा थी। आयशा वेट्रेस के कपड़ों में थी, उसने मास्क लगा रखा था। आयशा उस दिन स्पा गई थी, तब उसने अपने बालों को ब्राउन और रेड हाईलाइट करवा रखा था और अपने बालों को परमानेंट कर्लिंग करवा लिया था ताकि कोई उसे जल्दी से पहचान ना सके। आंखें छुपाने के लिए उसने ब्लू कलर के लेंस लगा रखे थे। उन दोनों को साथ में देखकर आयशा ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, नफरत है मुझे तुमसे इशिका,
तुम्हारी वजह से मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई और तुम यहाँ आराम से बैठकर अपने पति के साथ खाना खा रही हो। मैंने उस दिन तुम्हारे सामने कितनी रिक्वेस्ट की थी। क्या हो जाता जो तुम लोगों को सच नहीं बताती कि मैंने जानबूझकर माहिर के बच्चे को मारा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो महान बनना था। तुम्हारी इस महानता के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तो तुम्हें मैं खुश कैसे देख सकती हूँ। आयशा अब तक इस बात से अनजान थी कि इशिका प्रेग्नेंट है। वो उनके लिए पानी लेकर जा रही थी। आयशा ने उसके पानी में कुछ मिलाया। भले ही इससे तुम्हारी जान न जाए लेकिन ये तुम्हें अंदर से बीमार कर देगा, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। आयशा ने गुस्से से इशिका को घूरते हुए कहा। इसी के साथ आयशा की कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। जब उसे मालविका के अपनी असली माँ होने के सच के बारे में पता चला था तो वो बात करने के लिए मालविका के पास गई थी। मालविका राधिका के लिए नैनी का काम करती थी और साथ में किचन एरिया भी संभालती थी। श्रुति राधिका के लिए खाना लेकर आने वाली थी। उससे पहले मालविका उसे प्लेट में सर्व कर रही थी। खाना डालने के बाद उसने एक बार इधर उधर देखा। जब उसे लगने लगा कि कोई उसे नहीं देख रहा है तो उसने दवाई की कुछ बूंदें उसमें मिला दी थी। उसके बाद मालविका ने उसे दवाई को वहीं पर छुपा दिया था। आयशा ने उसे चुराकर उसके बारे में पता लगाया। वो एक आयुर्वेदिक दवा थी जिसके बारे में आसानी से कोई पता नहीं लगा सकता था। एक तरह का स्लो पॉइजन जो धीरे धीरे लोगों को अंदर से बीमार करता था। मुझे तुम्हें इसे रोजाना देने का मौका ना मिले लेकिन मैं मौका ढूंढ लूंगी। जब भी तुम मेरे सामने आओगी या मुझे चांस मिलेगा मैं इसे तुम्हारे खाने या बाकी चीजों में मिलाकर तुम्हें जरूर दूंगी। इशिका सिंघानिया, फिर मैं देखती हूँ कि कैसे तुम ये आजाद जिंदगी बिताती हो। तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें बिस्तर पर रहने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी आयशा सिंघानिया नहीं, आयशा ने मन ही मन कहा। आयशा पानी के ग्लास के साथ मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी कि तभी कोई उसे टकराया और ग्लास नीचे गिर गया। अचानक कांच टूटने की आवाज पर सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया था। आयशा ने गुस्से में उस शख्स की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। वो पार्थ था। उसने अपनी इस गलती पर आयशा से कहा, तुम्हें यहाँ किसने जॉब दी है? ठीक से काम करना आता नहीं है और मुंह उठाकर कुछ भी करने लग जाती हो। सॉरी सर, वो मेरा ध्यान नहीं था, आयशा ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। ध्यान नहीं था तो ध्यान देना सीखो। तुम्हारी हरकतों की वजह से किसी का काम बिगड़ा तो तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ सकती है, पार्थ ने उसे घूरते हुए कहा। इनडायरेक्टली उसने आयशा को वार्न कर दिया था कि वो उसके मामलों में टांग ना अड़ाए। उसके बाद पार्थ वहां से जाने लगा।
आयशा ने पार्थ को पहचान लिया था। वो खा जाने निगाहों से उसे देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, काम तो बिगाड़ दिया है तुमने मेरा पार्थ रायचंद। लगता है जल्द ही तुमसे मिलकर सेटलमेंट करना पड़ेगा और तुम्हें ये समझाना होगा हम दोनों का टारगेट एक ही है। वो मेरा शिकार है। पार्थ रायचंद को अकेले शिकार करने की आदत है। तुम मेरे रास्ते में आ रही हो आयशा सिंघानिया। मुझे अपनी अड़चनें अच्छे से मिटाने आती हैं और तुम्हारी असली जगह पहुंचाने में मुझे एक सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, तो बेहतर है कि आगे से मेरे सामने मत आना, पार्थ ने पलटकर आयशा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं। वैसे कुछ दिनों में मैं अपनी नई कहानी शुरू कर रही हूँ जो एज गैप रिलेशनशिप पर होगी। आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर पढ़कर ट्राई करना।